तो आज हम भगवद गीता का एक श्लोक आपको पढ़कर सुनाएंगे। श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गीता के संदेश का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहें और समाज को लाभ पहुंचाना चाहें, पिछले महीने जैसे आप जानते हो गीता जयंती का महीना था, आपको पता है दिसंबर 20 को गीता जयंती मनाई थी और गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता का वितरण करने के लिए। और इस साल दिसंबर के महीने में हमारे इस्कॉन के मंदिर ने कम से कम 8 लाख गीता केवल भारत में बांटी एक महीने में। तो 8 लाख लोग गीता लेंगे, एक गीता को अगर 3 व्यक्ति भी पढ़े तो आप सोच सकते हो 20 से 24 लाख लोग पढ़ेंगे। अगर उनमें से छोटी प्रतिशत लोग भी गीता को अपनाए तो आपके देश का नक्शा जो है बिल्कुल बदल जाए। तो गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, पर भारत में भी अगर आप सब तो खैर इसको उनके साथ जुड़े हुए हो तो आपका गीता से परिचय है, पर अगर आप साधारण समाज में भी किसी हिंदू से भी पूछो गीता का क्या संदेश है, 10 आदमियों से पूछोगे 12 अलग अलग राय मिलेंगे, क्योंकि हम गीता को पढ़ते रहे, सब सोचते हैं जो आपका सिद्धांत है उसको गीता के नाम से प्रस्तुत कर सकते हो। हरे कृष्ण। और गीता का जो संदेश है बड़ा स्पष्ट है, जिसमें यह स्थापित किया जाता है कि परम भगवान कौन है और किस प्रकार हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की चर्चा के लिए हमने गीता का एक श्लोक सुना है, इस श्लोक बोर्ड में भी लिखा है, आप चाहो तो मेरे साथ ला सकते हो और फिर मेरे पास ताम एवं
शरणं
गच्छ
तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत
सर्वभावेन भारत
प्रसाद अनुवाद हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और मेरे बात दोहराइए,
हे भारत,
सब प्रकार से
उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से
तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ओम ध्यान तिरंदस्य ज्ञानं जनमशलका चक्षुर तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविस्तारं सांसारीन भूतले स्वयं रूपा कदाहम् श्रीगुरो श्रीलावकमल श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपांशाजकारम् सजीवम् सद्वैतम् समधूतम् परिजनसहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण रूपदान सहना ललिता श्रीशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधाकान्त नमोस्तुते सत्त कांचन परम शांति स्थान प्रपर्शी शास्त्र। तो ये श्लोक का उच्चारण परम भगवान कर रहे हैं और ये श्लोक हमें गीता के 18वें अध्याय में प्राप्त हुआ है। एक रूप से देखा जाए हमें पूरा वैदिक साहित्य का सार भगवद गीता में प्राप्त होता है और पूरे भगवद गीता का सार हमें प्राप्त होता है 18वें अध्याय में। तो अगर आप 18वें अध्याय के कई प्रसिद्ध श्लोकों को समझ जाओ ठीक रूप से तो फिर आप पूरे गीता को मान लो आपने समझ लिया। तो भगवान इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसी की शरण में जाओ का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। शुरू से अंत तक भगवान इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें उनकी शरण में आना चाहिए। ध्यान से देखा जाए तो ये समझ में आता है कि हर जीवात्मा को किसी न किसी की शरण तो लेनी है। आप सब जो यहां उपस्थित हो क्योंकि आप ये ध्यान करने रुचि है, तो आप प्रयास कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए। कई हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं,
देवताओं की शरण लेते हैं, पर कई हैं जो ना देवताओं की शरण लेते हैं ना परम भगवान की, तो उनकी शरण नहीं लो मान लो तो किसकी शरण लेना पड़ता है? किसी फिल्मी कलाकार की, उसकी हम पूजा करते हैं, या कोई खिलाड़ी की, हाँ सचिन तेंदुलकर जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी की, या किसी राजनीतिक नेता की? कई राजनीतिक नेता हैं जो कि समय के साथ बड़े प्रसिद्ध बन जाते हैं, उनके जो शिष्य हैं उनको पूछते हैं जैसे आप भगवान को पूजा करते हैं, है ना? कई राजनीतिक नेता जिनके शिष्यों ने भगवान मानते हैं उनके चरण छूते हैं, मैंने खुद देखा है, जाके चरण छूते हैं जैसे भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। और कई देश थे, अब कम संख्या में है, जहां कम्युनिज्म का प्रचार होता है, होता था, और चाइना में अभी भी होता है, तो वहां लोग शरण लेते भगवान की बजाय लेनिन की या माओ की या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की। तो देखा जाए हम सब का स्वभाव ऐसा है कि किसी न किसी की शरण अपने लेना ही है। सच बात है झूठ? हाँ सच है झूठ। तो प्रश्न ये है किसकी शरण हम लें? अगर आप मान लो किसी प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, फिर भी कलाकार, खिलाड़ी, प्रसिद्ध व्यक्ति की शरण लो तो उसका क्या लाभ? मान लो आज आपको थोड़ा आर्थिक ना लाभ हो भी जाए, तो ये लाभ कब तक आपकी सुरक्षा करेगा? अंत में आप देखते हो प्रसिद्ध से प्रसिद्ध व्यक्ति भी समय के साथ बूढ़ा होता है, रोगी पीड़ित होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कोई इतिहास में व्यक्ति रहा है जो अपने आप को मृत्यु से बचा पाया है? और देवताओं की शरण लो तो देवताओं के द्वारा आपको वर आर्थिक भौतिक सुविधा प्राप्त हो सकती है। पर भगवान कहते हैं गीता में, यानि देव राजा देवन पितृन्यान्ति पितृव्रतः, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा वो ही मेरे धाम आएगा। तो भगवान गीता में ये भी कहते हैं ब्रह्मलोक तक हर व्यक्ति को जन्म मृत्यु का बंधन अनुभव करना पड़ेगा, केवल जो व्यक्ति मेरे धाम आए वो ही इनसे मुक्त हो सकता है। समान वैदिक साहित्य के अनुसार कृष्ण भगवान परम भगवान है, ये है भगवद गीता का निर्णय, और यही कृष्ण भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग समय में प्रकट होते हैं। जैसे कि उनको बोले झाड़ू झाड़ू अभी नहीं माने, जब यही कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे रामचंद्र जी के रूप में, वो यही कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे और किस रूप में? किस रूप? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। मैं सोच रहा था कि आप भक्तों के ज्ञान होना चाहिए, क्या आपके वाराणसी शहर में जिसे काशी भी बुलाते हैं परम भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने काफी समय काटा, यहाँ ही आगे वाराणसी शहर में सनातन गोस्वामी मिले थे चैतन्य महाप्रभु से? सनातन गोस्वामी, उनके भाई रूपक गोस्वामी, एक मुसलमान राजा हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे। हुसैन शाह का शासन, हुसैन शाह का राज्य विश्व में सबसे धनी राज्य था। आज से 500 साल पहले विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका नहीं था, अमेरिका तो था ही नहीं, अमेरिका तो केवल 300 साल पुराना है। सबसे धनी देश था भारत, और भारत का सबसे धनी स्थान था बंगाल का, और बंगाल के राजा कौन थे? वो सिंहशाह जो चापलूसी करके राजा बन गया था और उसने अपने शासन का निर्देशन की जिम्मेदारी दी थी दो भाइयों को रूप और सुधाकर, क्योंकि उन दिनों में प्रजा न थी, लगभग 100% हिंदू थे, राजा था मुसलमान। तो उसे चाहिए था ऐसा कोई व्यक्ति शासन करने के लिए जिसके प्रति श्रद्धा का स्नेह हो। तो उन्होंने इन दो भाइयों को दी जिम्मेदारी। रूप गोस्वामी अन्ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी? नो, यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू वॉन्ट समवन टू ट्रांसलेट फॉर यू? ओके। सो पहले रूप गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्यागी, फिर सनातन गोस्वामी ने देखा मेरा मालिक राजा जो है हिंदू बंधों को तोड़ रहा है, उड़ीसा के राजा जो हिंदू धार्मिक थे उसे युद्ध कर रहा है, तो उन्होंने निर्णय कर लिया मैंने नौकरी नौकरी छोड़नी है। तो उन्होंने सूचना भेजी राजा को कि मैं बीमार हूं। असल में वो 30 ब्राह्मणों के साथ भागवत का अध्ययन कर रहे थे। राजा को शक हुआ कि शायद बीमार नहीं हो। राजा ने साथ में ये भी सोचा मुझे भेजने दो किसी को, मेरे डॉक्टर को, उनका इलाज करने के लिए, क्योंकि राजा जाना चाहता था युद्ध करने आगे उड़ीसा के राजा के साथ। तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा और कहा जाके देखो सनातन को क्या बीमारी है। आज के जमाने में खास करके आगे वाराणसी में तो नहीं पर बड़ी कोठियों में, खास करके विदेशों में, आप किसी घर में क्या बिल्डिंग में भी घुस नहीं सकते, इतने दरवाजे होते हैं, इतने बटन हैं, आप बिल्डिंग में अंदर पांव रखने से पहले वो पूछते हैं आप घंटी बजाओ कौन है, साहब बोलो कौन है। तो अगर वो नहीं चाहते हैं अंदर घुसो तो बटन ही नहीं दबाते। तो अगर जैसे कि आप सबके पास मेरे ख्याल से सेल फोन है, सबके पास है, तो इससे आप लोग फोन जवाब देने से पहले देखते हो ना कौन फोन कर रहा है, और अगर आप उसको जवाब नहीं देना चाहते तो क्या करते हो, काट देते हो या जवाब भी नहीं देते, कि नहीं? तो अगर कोई कर्जा लेने वाला व्यक्ति हो तो आप बिल्कुल जवाब नहीं देते, आपने कितना पैसा दे रहा हो या कुछ। तो उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। तो ये डॉक्टर सीधा सनातन गोस्वामी के घर में घुस गए और सनातन गोस्वामी के घर में घुसे तो वहां उन्होंने देखा ये सनातन गोस्वामी तो 30 ब्राह्मणों के साथ भगवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने राजा को सूचना दी आपके प्रधानमंत्री तो बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य में हैं, वो तो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, बीमार थोड़ी है। राजा ने निमंत्रण दिया सनातन गोस्वामी को, कहा तुम्हारा जो दूसरा भाई था छोटा भाई रूप गोस्वामी उसने लापरवाही से अपनी नौकरी छोड़ दी, अभी तुम भी ऐसे निकम्मे बन रहे हो, संभालो चाबी, ये लो मैं जा रहा हूं युद्ध में। सनातन ने कहा मैं तो अब नहीं लड़ सकता, आज मैं अब शास्त्र नहीं कर सकता, मैं स्वयं भजन करना चाहता हूं। राजा को ये पसंद नहीं आया। राजा ने कहा डाल दो इसे जेल में, आजकल तो आप कोर्ट में जा सकते हो, उन दिनों में तो खास करके जब मुसलमान राजों का शासन था आपके पास ये सुविधा नहीं थी। तो सनातन जेल में थे और उन्हें अपने बड़े भाई छोटे भाई रूप गोस्वामी का पत्र आया जहां की उन्होंने सूचना दी कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी संपत्ति छोड़ी है। जब उनके भाई रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर ली थी सोने के सिक्कों के साथ, अंदाजा लगाओ। पर उन्होंने 50% बांट दिया, घंटी नहीं बजाना, 50% बांट दिया ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को और 25% रखा उन्होंने अपने भाई के लिए। तो सनातन गोस्वामी छुटे और वो अपने सेवक ईशान के साथ आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए कहा वाराणसी में आ रहे थे, रास्ते में वो रुके एक होटल में होटल का जो मालिक था बड़ा होशियार था, उसने रिसेप्शन में स्वागत करने के लिए एक जोशी रखा था। एक जोशी रखा था जो देख लेता था किसी यात्री के पास कितनी संपत्ति है, और अगर ज्यादा संपत्ति होती थी तो उसको लूट लेते थे। तो लोगों को लूटना कोई नया फैशन नहीं, पुराना लगता है। तो उस नौकर ने कहा माँ अपने मालिक से, ये बड़ा धनी व्यक्ति है सनातन गोस्वामी। असल में उनके नौकर ईशान के पास 8 सोने के सिक्के थे, तो बड़े सावधानी से ध्यान पूर्वक ये मालिक सनातन की सेवा कर रहा था। सनातन का ध्यान था राजनीतिक कार्यों में, तो उनको शक हुआ ये आदमी मेरी इतनी खुशामद कर रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, जरूर उसको कुछ चाहिए मेरे से। अगर कोई आपकी खुशामद करे कहे देखो तुम कितने होशियार हो, कितने सुंदर हो, तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई बोलो क्या चाहिए मेरे से। तो सनातन को इतनी खुशामद कर रहा था, बड़े ध्यान पूर्वक सेवा कर रहा था, सनातन को शक हुआ कि जरूर इसे कुछ चाहिए मेरे से। सनातन ने अपने नौकर से पूछा, तुम को धन तो नहीं उठा रहे अपने साथ? तो हिचकते हुए नौकर ने कहा, नौकर थोड़ा बेईमान था, नौकर ने कहा मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। तो सनातन ने कहा तुम मौत को साथ क्यों लेकर चल रहे हो? सनातन ने वो 7 सोने के सिक्के लेकर वो होटल के मालिक को दिया। होटल के मालिक ने कहा आज रात को मैं तुम्हें मारने वाला था, तुमने ये खुद ही मुझे देकर शर्मिंदा कर दिया है, मैं तुम्हारे से ये धन नहीं ले सकता। सनातन ने कहा आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा जबरदस्ती, उससे अच्छा आप ही ले लो। फिर सनातन ने वो 7 सोने के सिक्के उसे दिए, उन्होंने सहयोग दिया सनातन को वाराणसी पहुंचने के लिए। रास्ते में सनातन के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था श्रीकांत, क्योंकि सनातन छुट गए थे जेल से तो राजा को ये पता नहीं था। तो सनातन आ रहे थे कहां, आपके शहर काशी में, क्यों? क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे कहां, चंद्रशेखर आचार्य के घर। चंद्रशेखर आचार्य शूद्र खानदान के सदस्य थे और महाप्रभु उनके घर में ठहरे थे। किसके घर में? शूद्र के। चंद्रशेखर आचार्य शूद्र खानदान के थे और महाप्रभु परम भगवान थे जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, पर वो कहां रुके थे? चंद्रशेखर के घर में। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर भगवान के भक्त थे। तो आजकल आप भारत में देखते हो लोगों को यही चिंता रहती है, ऊंची जाति नीची जाति है ना, और अगर आज तो सब लड़ते हैं कि हम निजी जाति में आ जाए क्योंकि उसमें ज्यादा सुविधा मिलती है। तो जो ऊंची जाति में जन्म लेते हैं वो भी पैदाइशी में गलत नाम डाल देते हैं कि ज्यादा सुविधा मिलेगी जिंदगी भर। और हमारे राजनीतिक नेता भी यही कहते हैं ऊंची जाति निजी जाति, पर हमारी इस्कॉन संस्था में शुरू से ही कोई भेदभाव नहीं है। कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति आया था हमारे मंदिर में, तो हमने उन्हें कहा कि हमारी संस्था में कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति को हक है मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करना, उतना ही नहीं इस्कॉन के मैं भक्त दीक्षित भक्त भी बन जाना और ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके ठाकुर जी की सेवा भी करना। कोई भेदभाव नहीं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमेरिकन हो, गोरे हो, काले हो, लंगड़े हो, कोई भी, खाली एक तालीम चाहिए। क्या है वो तालीम? भगवान की सेवा करने की इच्छा। और शास्त्र में कहा गया है खलो शुद्ध संभव। कलयुग में हम सब क्या है? शूद्र के समान है। बड़ा नहीं मानना, हम सब शूद्र के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रह रहे थे एक शूद्र के घर में, पर उन्हें कोई लज्जा नहीं थी कि उन चंद्रशेखर क्या थे, उनके उच्च कोटि के भाग। तो सनातन गोस्वामी आए थे और महाप्रभु जी को मिलने के लिए, और वो खड़े थे चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने, क्योंकि वो आए थे, उनकी बड़ी दाढ़ी उग गई थी क्योंकि छुप छुप कर आ रहे थे। तो चंद्र परम भक्त चैतन्य महाप्रभु तो परम भगवान है, तो उन्हें पता था कि सनातन आ गए हैं मुझे मिलने के लिए। तो सनातन उन्होंने चंद्रशेखर को कहा, बाहर जाके देखो एक प्रसिद्ध संत आया है मुझे मिलने। और चंद्रशेखर बाहर बरामदे में आए, चारों तरफ देखा, उन्हें कोई संत नहीं देखा, केवल उन्हें एक मौला दिखा दाढ़ी के साथ कोई व्यक्ति, तो उन्हें सोचा वो मौला है। तो उन्होंने लौट कर कहा महाप्रभु से, वहां तो कोई संत नहीं है, एक मौला था केवल दाढ़ी वाला। तो महाप्रभु ने कहा वो मौला नहीं है, वो बड़ा प्रसिद्ध भक्त है। तो उन्होंने अंदर बुलाया, जब अंदर बुलाया, आप तो मोबाइल फोन बंद करोगे कृपा करके, उन्हें अंदर बुलाते ही महाप्रभु ने उसे गले लगाया। और जब चंद्रशेखर ने देखा कि महाप्रभु इसे इतनी गहराई के साथ गले लगा रहे हैं, वो आश्चर्य हो गए, देखकर समझ गए कि जरूर ये खास भक्त होगा। चंद सनातन के शरीर में उन्होंने एक महंगी चादर ओढ़ी हुई थी, क्योंकि जब वो आ रहे थे वाराणसी तो रास्ते में उनके रिश्तेदार श्रीकांत के घर में रुके थे, और श्रीकांत ने देखा क्या सनातन ने अपनी ऊंची नौकरी त्याग दी, और ये क्या ये सब सन्यासी जैसे भिखारी बन गया है। तो देखा ये क्या कर रहे, तुम आओ मेरे पास रहो, मैं तुम्हें राज सब सुविधा दूंगा। जैसे कि आप लोग भक्त बन जाते हो तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, क्या भक्त बन गए, तो उच्च समाज में तो ऊंचा स्थान हो सकता है। तो सनातन के रिश्तेदार ने उन्हें महंगी चादर दे दी थी ओढ़ने के लिए। तो सनातन के शरीर में महंगी चादर ओढ़ी हुई थी, तो सनातन के चित्र महाप्रभु ने महंगी चादर देखी, तो उसको कहा नहीं कि वो जब ध्यान से घूर कर देख रहे थे, तो सनातन समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु ये खुश नहीं है कि मैंने इतनी महंगी चादर पहनी हुई है। तो गए गंगा के तट पर, एक बूढ़ा व्यक्ति था वह फटी हुई चादर के साथ। तो सनातन ने उनसे कहा, हे बाबा आप मुझे अपनी फटी हुई चादर दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें ये महंगी चादर देना चाहता हूं। बाबा ने कहा तुम क्या मखौल कर रहे हो, तुम ये इतनी महंगी चादर दोगे मेरी फटी हुई चादर के बदले में? नहीं मखौल नहीं, सचमुच। फिर उन्होंने फटी हुई चादर ओढ़ कर आए चैतन्य महाप्रभु के सामने। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर किसी बार बीमार व्यक्ति का जब इलाज करता है तो ये नहीं कि बीमारी का कारण वो छोड़ देता है। उनका मतलब था सनातन ने जब समाज को त्यागा है, सब भौतिक सुख त्यागा है, तो उन्हें सादा जीवन बिताना है। साधुओं के लिए क्या कहा जाता है? सादा जीवन ऊंचा विचार। सादा जीवन रखो और ऊंचा विचार। ऊंचा विचार मतलब आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति। तो चैतन्य महाप्रभु बनारस में ही मिले थे प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि एक मायावादी सन्यासी थे जिनके 10,000 से अधिक शिष्य थे। वहाँ प्रभु जी की आप भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर और तपन मिश्रा, उन्होंने कहा महाप्रभु से एक दिन, हम सह नहीं सकते आपकी निंदा जो ये सन्यासी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मायावादी सन्यासी कह रहे थे महाप्रभु इतने बड़े विद्वान हैं, 11 साल की आयु में महाप्रभु ने भारत के हर प्रसिद्ध संस्कृत के पंडित को हरा दिया था और शास्त्रों का अध्ययन करने के बजाय वो नाच रहे थे, गा रहे थे, हरिनाम कीर्तन करते हुए। तो उन्होंने कहा ये मायावादी सन्यासी में ये कैसा सन्यासी है, सन्यासी का तो कर्तव्य है हमारे जैसा बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करे, नाचे गाए थोड़ी। तो उन्होंने एक महाराष्ट्र ब्राह्मण ने कहा मैं मायावादियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मायावादी कैसे कहते हैं आप जानते हो? कई बार हम लोगों से पूछते मायावादी कैसे कहते हैं, तो कहते हैं जो माया में है। तो एक दूसरे देखते हम सब मायावादी हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मायावादी उनसे कहा जाता है जो कि भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, जो सोचते हैं कि भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो सुधारित व्यक्ति बन जाते हैं, जो सोचते हैं जो मूर्ति का रूप है, आर्ष विग्रह का रूप है, ये तो किसी कल्पना है, वो तो कभी संभव ही नहीं हो सकता कि भगवान एक मूर्ति में उपस्थित हो। तो महाप्रभु ने कहा कि इनकी संगत हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का महान अपराध है परम भगवान के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ ही मिले थे प्रकाशानंद सरस्वती, तो महाप्रभु जी गए थे इस ब्राह्मण के घर में और ये मायावादी सन्यासी सब बैठे थे ऊंचे मंच पर। जब महाप्रभु जी वहां गए, महाप्रभु ने बड़ी विनम्र भाव के साथ कहाँ बैठे, जहाँ के लोग पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। तो सारे सन्यासी ऊंचे मंच में बैठे थे, महाप्रभु कहाँ बैठे थे, गंदे स्थान में जहाँ लोग पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। महाप्रभु जी तो परम भगवान है, तो उन्होंने एक ऐसी लीला प्रकट की। क्या लीला? वहां उन्होंने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया जिसकी आप तुलना कर सकते हो लाखों प्रकाश सूर्यों के साथ। एक सूर्य का आप देखते हो कितना प्रकाश होता है, पर अगर लाखों सूर्य के प्रकाश को जोड़ दिया जाए तो आप क्या कल्पना भी कर सकते हो उस प्रकाश की? नहीं कर सकते। तो महाप्रभु जी ने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया कि प्रकाशानंद सरस्वती उनके साथी समझ गए ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं, परम भगवान है। और फिर सब मायावादी क्या बन गए? वैष्णव बन गए। फिर आपके बनारस में ही एक बहुत बड़ा संकीर्तन आंदोलन निकला था जिसमें 10,000 से ज्यादा भक्त नाच रहे थे और गा रहे थे। ताका वाराणसी शहर खास करके हम गौड़िया वैष्णव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं काफी समय कहा था। तो परम भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में। तो इस श्लोक में जो कि आप गीता के 18वें अध्याय में प्राप्त कर रहे हो, परम भगवान क्या कह रहे हैं, सब प्रकार से मेरी शरण में आओ। तो आप कहोगे सब प्रकार से मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है, संदेश क्या है, भगवान ने हमें क्या दिया है? एक ध्येय दिया है शरीर। इस ध्येय में क्या है आपके पास? मन और क्या, बुद्धि और इंद्रिया। मन दिया है तो भगवान कह रहे हैं सब प्रकार से मन का उपयोग करो क्या मेरी सेवा में। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मन मन बाबा मन भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु मम वाचि सत्यम ते प्रति जने प्रयोजन। मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। फिर भगवान ने ध्येय दिया है जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, अनेक इंद्रियां हैं, इनका उपयोग करो कैसे, मेरी सेवा में। तो भगवान कह रहे हैं सब रूप से मेरी शरण में आओ। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामि। कहने सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ तो आप पूछोगे अगर हम आपकी शरण में आते तो आप करोगे क्या हमारे हमें क्या मिलेगा। कई बार क्योंकि साधारण भाषा में साधारण जीवन में अगर हम कुछ करें किसी और के लिए हम भी कुछ उम्मीद रखते हैं वो हमारे लिए कुछ करेगा है ना। आप कारखाने में काम करते हो दफ्तर में काम करते हो 40 घंटे हफ्ते के लिए उसके बदले में आप क्या उम्मीद करते हो कितनी तनख्वाह मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु बेचता है उसके बदले में उम्मीद रखता है मुझे इतना दाम मिलेगा। तो आप पूछना चाहोगे कि अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं क्या मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा घबराओ मत। तो भगवान कह रहे हैं सब प्रकार से मेरी शरण में आओ। भगवान की शरण में आओगे तो माया की शरण से बचकर रहोगे। जैसे कि कृष्णदास कविराज जी कहते हैं चैतन्य चरितमृत नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ में कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकारा यहाँ कृष्ण तायनी माया रा अंधकारा। जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहां सूर्य है वहां अंधेरापन संभव नहीं है कि नहीं। तो भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ। तो आप अभी पूछना चाहोगे ठीक है भगवान की शरण में आने को क्या है अभी हमें यह बताओ कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवान कहते हैं उसकी कृपा से जब आप भगवान की शरण में आते हो तो उसका एक परिणाम यह है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि किसी खानदान में छोटा बच्चा माता पिता के आदेश के अनुसार कार्य करता है उसके बदले में माता पिता उसकी सुरक्षा की चिंता करते हैं है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं यार भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मेरी कृपा से। भगवान ने गीता में क्या कहा है ये यथमं प्रपद्यन्ते जितनी मात्रा में कोई मेरे शरणागत होता है उतनी मात्रा में ही मैं उसकी सुरक्षा करता हूं। जैसे कि साधारण भाषा में लोग क्या कहते हैं जैसा धाम भरोगे वैसा मान मिलेगा। सच बात है ऊंचा धाम भरोगे तो अच्छा मान मिलेगा घटिया माल धाम दोगे तो मेड इन चाइना मिलेगा। जैसा धाम भरोगे वैसा मान मिलेगा। तो यहां भगवान कहते हैं अगर तुम उनकी शरण में आओगे सब प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करोगे भगवान की सेवा में तो यहां कह रहे हैं भगवान उसके बदले में तुमको उनकी कृपा से परम शांति की प्राप्ति होगी। तो परम शांति का अर्थ है ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। परम शांति किसे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए आपका मन शांत है क्या लोग क्या कहेंगे अधिक मात्रा में शांत है। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है वो व्यक्ति सुख दुख आदर अपमान गर्मी सर्दी हार जीत हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। और जिसने भगवान की शरण स्वीकार नहीं की उसे आप सारे विश्व का धन भी दे दोगे वो सोचेगा मुझे और चाहिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं उनकी शरण में आओगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी। ये परम शांति प्राप्त करने के लिए और कोई साधन नहीं है। अगर आप सोचो कि हम अंबानी जैसे धनी बन जाएंगे और फिर परम शांति आएगी नहीं। परम शांति की प्राप्ति केवल जब संभव है जब आप परम भगवान के शरण स्वीकार करते हो। अमेरिका में कई साल पहले एक सर्वे हुआ था जहां लोगों को पूछा था तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए जो धन से प्राप्त नहीं हो सकता। और नंबर वन सबसे ज्यादा क्या कहा लोगों ने मन की शांति। तो मन की शांति सबको चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं गोविंद दास कविराज, तो उन्होंने हमें एक बड़ी सुंदर रचना दी है जिसे आप बाजा हुरे मना के नाम से जानते हो। तो कहते हैं बाजा हुरे मना श्री नंद नंदन चरण गोविंद रे, कहते हैं हे मेरा मन तुम भय से भरे हुए हो और भय से रहित होना चाहते हो तो क्या है उपाय। महानंद के पुत्र की शरण स्वीकार करो। यहाँ भगवान कह रहे हैं तो उसके बदले में भगवान की कृपा से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। तो अगर आपको असली शांति चाहिए, धन ऐश्वर्य शक्ति की आवश्यकता है, आपको भगवान के शरणगत होने की आवश्यकता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इसके माध्यम से आपको क्या आएगा, परम शांति। आगे परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। भगवान के शरणगत होने का एक लाभ क्या है, परम शांति। दूसरा लाभ क्या है, परम नित्य धाम। नित्य धाम, नित्य धाम का मतलब है नित्य का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता। धाम का अर्थ है भगवान का धाम। ये जो भौतिक जगत जहां आप और हम रह रहे हैं उसका नाम है कुंथा जगत। चाहे अमेरिका जाओ ब्रह्मलोक जाओ, कुंथा जगत का अर्थ है जहां की कष्ट ही कष्ट है। और इसकी तुलना में भगवान के धाम को कहा जाता है वैकुंठा। वैकुंठा के अर्थ है जहां की किसी प्रकार का कष्ट नहीं, ना कोई बुढ़ापा ना बीमारी। पर हम कई बच्ची वैसे जो कहेंगे अरे भाई कोई कष्ट नहीं इसमें क्या आनंद, हमें तो आनंद आता है हॉस्पिटल जाने में जाने में। तो भगवान के नित्य धाम में कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम मेरे नित्य धाम में प्रवेश कर सकोगे। आज भी लोग भारत में राम राज्य का स्मरण करते हैं, है ना। आज भी लोग के ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भी राम राज्य का सुख प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट भौतिक कष्ट कोई नहीं। और व्यक्ति चुन सकते थे अपने मित्र का समय। और हकुरी प्रजा सुखी थी, क्यों, क्योंकि वो भगवान राम की उपासना थी। तो आज हम चाहते हैं कि हमें राम राज्य का सुख प्राप्त हो, पर आज हम चाहते हैं राम राज्य का सुख राम के बिना। जैसे तो कहते हैं इंग्लिश में गॉड किंगडम विदाउट गॉड, वी वॉन्ट गॉड किंगडम एंड वी डोंट वॉन्ट गॉड। हमें बहुत भगवान के वैकुंठ धाम का सुख चाहिए और भगवान बीच में नहीं चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कि भौतिक जगत के पार नित्य धाम है भगवान का, जहां जो व्यक्ति जाए कभी वापस लौट कर नहीं आता, जहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप विदेश जाना चाहो तो आपको वीजा पासपोर्ट प्लेन की टिकट ये सब सुविधाएं प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार अगर आप भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करना चाहो तो आपको आध्यात्मिक तालमेल अनुकूल करना पड़ेगा। और इसका ये अर्थ है कि हमारे जो हृदय में अशुद्ध विचार है, गलत विचार है, उनको हमें उखाड़ना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे ही शरण में आओ तो इसके बदले में एक लाभ क्या है, हमें परम शांति प्राप्त होगी। दूसरा लाभ क्या है, तुम मेरे नित्य धाम में प्रवेश कर सकोगे। तो नित्य धाम में प्रवेश करने का मार्ग क्या है, भगवान के शरणगत होना। हम एक प्रार्थना बोलते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शरक्या। हमारा जन्म हुआ था अंधकार में, गुरु साधु के सहयोग से हमारी अज्ञानता नष्ट हो गई है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है लिखना पढ़ना नहीं जानता, माँ बाप उसे पाठशाला में भेजते हैं, लिखना पढ़ना सीखता है और आस्ते आस्ते उसका भौतिक ज्ञान बढ़ता है। उसी प्रकार हम सब आध्यात्मिक अज्ञानता में जन्म लेते हैं, पर साधु संगत के द्वारा। आज सुबह हम भागवत का उपदेश दे रहे थे, उसके एक प्रसिद्ध श्लोक पर नास्ता पड़े ईश्वर उपदेश नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भागवती नैति की। ये श्लोक भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में है, जहाँ सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक ग्रंथ भागवत को सुने, भक्त भागवत के द्वारा या ग्रंथ भागवत का संदेश आपको प्राप्त हो, सबकी अज्ञानता दूर होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप भगवान के परम नित्य धाम पर प्रवेश करना है। परम नित्य धाम में कैसे प्रवेश करोगे आप? परम नित्य धाम में प्रवेश करोगे आध्यात्मिक तालीम प्राप्त करके। तो ये भौतिक संसार है कुंथा लोका, भगवान का नित्य धाम है वैकुंठ लोक। तो फलम भगवान कह रहे हैं, अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें परम शांति की प्राप्त होगी और साथ में भगवान के परम नित्य धाम में प्रवेश कर पाओगे। तो गीता का संदेश है अज्ञानता को दूर करने के लिए, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उनका खास आदेश है कि हमें गीता का अध्ययन रोज करना चाहिए। हमारे चैतन्य चरितमृता में एक कथा है, एक समय चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो श्री रंग मंदिर में पहुंचे। श्री रंग मंदिर में एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठकर पूरे भगवद गीता के 18 अध्यायों के श्लोकों का उच्चारण करता था, और क्योंकि वो अनपढ़ था कई श्लोकों का उच्चारण ठीक रूप से करता था और कईयों का गलत करता था, और क्योंकि वो अनपढ़ था कई श्लोकों का अर्थ भी उसे समझ नहीं आता था। जब भी वो नियमित रूप से एक ही स्थान में बैठकर 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, और जब उच्चारण करता था उसके ध्येय के द्वारा शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते थे, जैसे कि शरीर से शरीर कांपना, नेत्र से आंसू बहना, बाहर खड़े हो जाने। चैतन्य महाप्रभु जी तो ये घटना देखकर समझ गए ये ब्राह्मण शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो महाप्रभु जी उसे मिलने गए और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे हाथ में तुमने गीता पकड़ी हुई है, मैं रोज देखता हूं तो तुम यहां बैठकर गीता पढ़ते हो, और मैं ये भी देख रहा हूं कि गीता पढ़ते हुए तुम शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हो, क्या कारण? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं इसी इलाके में रहता हूं और मैं अनपढ़ हूं, तो मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो, तो मैं रोज इस खंभे के पास बैठकर 18 अध्यायों का उच्चारण करता हूं। कई उपकार मुझे समझ आता है, कहीं का नहीं आता, जब भी मैं करता हूं और जब मैं देखता हूं भगवान कृष्ण पूरे विश्व के स्वामी होते हुए अपने भक्त अर्जुन के पार्थ सारथी बन गए, उनके ड्राइवर बन गए। बड़ा आदमी ड्राइवर रखता है ना, अमीर लोग मोटर खुद ही चलाते ड्राइवर रखते हैं, तो यहां आप देखते हो कि भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए, पार्थ सारथी भगवान के रथ को चला रहे। अर्जुन ने कहा ले जाओ मैं रथ को दो सेनाओं के बीच में, तो भगवान ले गए। तो उस ब्राह्मण ने कहा जब मैं परम भगवान की निम्रता देखता हूं तो ये देखकर मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं। तो चेतन ने माफ, और ये ब्राह्मण ने कहा मैं अनपढ़ हूं इसलिए मैं कई श्लोकों का उच्चारण गलत करता हूं, तो लोग हंसते मेरे ऊपर जब मैं गलत करता हूं, और क्योंकि मेरे गुरु का आदेश था रोज 18 अध्यायों का अध्ययन करना, मैं नियमित रूप से ये कर रहा हूं। तो महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने ब्राह्मण को गले लगाया और कहा तुम गीता के संदेश को समझ गए हो। यहां क्या है संदेश, अनपढ़ ब्राह्मण था, उसे समझ में नहीं आता था क्या है महाप्रभु किस प्रकार श्लोकों का उच्चारण करें, पर क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था रोज गीता के 18 अध्यायों को पढ़ो, वो नियमित रूप से इनका पालन कर रहे थे। और पालन कर रहे थे जिसका क्या परिणाम हुआ, भगवान स्वयं उसे मिलने आए। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया, भगवान स्वयं उन्हें आए दर्शन देने के लिए। तो हमें भी ध्यान से गीता को पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ने से क्या है लाभ, आपकी अज्ञानता दूर होगी और अध्यात्मिक ज्ञान जो है बढ़ेगा। तो भारत भगवान इस श्लोक में हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हमें उनकी शरण में आना चाहिए, और भगवान की शरण में आने का अर्थ है कि आप अब सब प्रकार से उनकी सेवा करो, मन से उनकी सेवा, वाणी से क्या सेवा करोगे, वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की कथा का उच्चारण, और शरीर से क्या सेवा करोगे, नेत्रों से भगवान के सुंदर विग्रह को देखो, पैरों से मोटर चलाओ, साइकिल चलाओ, स्कूटर चलाओ, पैदल जाओ, कहां मंदिर पहुंचने के लिए, हाथों का उपयोग करो भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, और जीभ का उपयोग करो भगवान का गुणगान करने के लिए, नाकों का उपयोग करो भगवान को अर्पित किए हुए फूल को सूंघने के लिए, सिर का उपयोग करो भगवान के सामने झुकाने के लिए, इस प्रकार देह का उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो और जीवानी द्वारा भगवान का गुणगान करो, तो इस प्रकार आप सब प्रकार से भगवान की शरण स्वीकार कर रहे हो। शरण स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है तो हाँ कृष्ण भगवान के भक्त करो जो उनका शिक्षा के विरुद्ध विपरीत हो, तो उनकी शरण लो का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन। उनकी शिक्षा क्या है, उसे आप वैदिक साहित्य में प्राप्त कर सकते हो, और उनकी शिक्षा का पालन करो तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, भगवान की परम कृपा। परम कृपा का अर्थ है इसके बदले में आपको परम शांति मिलेगी, और परम शांति के साथ और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, हाँ भगवान के नित्य धाम, नित्य धाम, नित्य धाम मतलब जो धाम कभी समाप्ति है तो वहां प्रवेश कर सकोगे। जैसे अगर आपने अमेरिका जाना चाहे तो आपको वीजा लेना पड़ता है, आपको आप तो जानते हो अमेरिका का वीजा कितनी कठिनाई से मिलता है, आपको बताना पड़ता है कि नहीं नहीं आप तो सचमुच जाके वापस आओगे। तो भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करने के लिए हमें भी आध्यात्मिक तालीम अनुकूल करनी पड़ेगी। और ये ऐतिहासिक तालीम आप अनुभव अन्य कोई कर सकते कली को में कैसे भगवान के देव नामों के उच्चारण के द्वारा कहा गया है कल दसें राजन अति का महागुना कीर्तन कृष्ण से परम प्रचित सब कल दसेनानंद इस अति का महागुना कीर्तन कृष्ण से मुक्त संगत से परम जन कलियुग में दोष ही दोष है प्रेत गुण है ये कलियुग में क्या ये गुण क्या है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण तो हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी कहते थे जब आप हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो तो आप अपने जीभ से भगवान के चरण कमलों को छू रहे हो आप भगवान के चरण कमलों को छूना चाहते हो कौन कौन छूना चाहता है सब भगवान के चरण कमलों को जीभ से छूना चाहते तो आप भगवान के चरण कमल को जीव से छू सकते हो कैसे हरे नाम के उच्चारण से देखिए हरे नाम इतनी सुंदर नाम आदि सामने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्न त्वम नाम नामिना भगवान के जो नाम है चिंतामणि परत पत्थर के समान है चिंतामणि परत पत्थर का क्या अर्थ जहां भी आप उसे छूओगे उस चीज को सोना बना देती है तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है ज्ञान से अज्ञान से जो भी इनका उच्चारण करे उसे क्या पहुंचेगा लाभ पहुंचेगा और अगर भगवान के नामों का उच्चारण करोगे इसके द्वारा असली सुख शांति होगी तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि भगवान के नामों को अपना भगवान के नामों को अपनाओ भगवान ने हमें जीभ दिया है दो कान दिया है जीभ के द्वारा भौतिक चर्चा कर सकते हो या आध्यात्मिक चर्चा और भौतिक करोगे तो बंधन में फंसोगे गहराई से आध्यात्मिक चर्चा करोगे तो मुक्त हो जाओगे तो नामा चिंता ने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हो भगवान के नामों के उच्चारण से आप हर रूप से पूर्णता संतुष्टता प्राप्त कर सकते हो शुद्ध हो भगवान के नाम में वो शुद्ध है और आप उनके नामों को उच्चारण करने से आप भी शुद्ध बन सकते हो फिर नित्य मुक्त हो भगवान के नाम आपको असली मुक्ति दिला सकते हैं तो आप सबसे ये विनती है कि आप हरि नाम को अपनाओ भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है उन्होंने भगवत प्राप्ति का साधन बहुत सरल बना दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जहां हो वहीं रहो केवल प्रयास करो अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए और चेतना को शुद्ध बनाने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं नौकरी धंधा छोड़ने की आवश्यकता नहीं केवल इन विधियों के पालन की आवश्यकता है क्या है नाम का उच्चारण साथ में गीता भागवत का अध्ययन तीसरा साधु संगत साधुओं की संगत बहुत महत्वपूर्ण है साधु संगत सर्व शास्त्र काय लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि काय सारे शास्त्र का निर्णय है क्या साधु की संगत कहा गया है अगर आपको एक पल के लिए भी शत भक्तों की संगत प्राप्त हो तो आपका आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है तो इसका लाभ उठाओ फिर भगवान के आचर विग्रह की पूजा भगवान अपने आप को आचर विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं जिसके द्वारा भगवान हमारी सेवा लेते हैं भगवान आचर विग्रह का मतलब है मूर्ति के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में रामचंद्र जी के रूप में कृष्ण भगवान के रूप में अनेक रूपों में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति और अगर आपको असली सुख शांति चाहिए तो यही है उपाय ये है गीता का निर्णय गीता के अंत में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में तीन प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर सकते हो, एक है राजसिक सुख, दूसरा है तामसिक सुख, तीसरा है सात्विक सुख। सात्विक सुख के विषय में भगवान कहते हैं शुरू में कड़वा बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो। और राजसिक सुख क्या है, लक्षण शुरू में मीठा बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। और तामसिक सुख क्या है, जो शुरू से अंत तक अज्ञानता पर निर्भर है। तो आप कहोगे स्वामी जी सात्विक सुख के विषय में आपने कहा शुरू में कड़वा बाद में मीठा, क्यों? शुरू में जब आपको सूचना मिलती है कि आपको पाप के कार्यों से बचना है, भजन करना है, जाप करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, ताकत मन विचलित हो जाता है, कहता है अरे कहां है समय मेरे पास जाप करने के लिए, कहां है? पर आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, चाहे आप भक्त हो या अभक्त। दिन में तो केवल 24 घंटे रहेंगे, ये नहीं कि अगर आप भक्त बन गए तो आपका 28 घंटे का दिन हो जाएगा, 24 घंटे दुनियादारी के लिए, 4 घंटे भजन के लिए। तो दिन में तो 24 घंटे ही रहेंगे, तो अगर आपको भजन के लिए समय निकालना है तो कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो शुरू में वो कड़वा दिखता है, जैसे कि बच्चे को आदत रहती है अंगूठा चूसने की, तो जैसे बड़ा होता है माता ही आदत को तोड़ती है। तो शुरू में जब बच्चे को कहा जाता है नहीं चूसो अंगूठा, बच्चा रोता है, तो बड़े होकर समझ जाता है क्या मम्मी भलाई के लिए। तो जब आप शुरू में जुड़ते हो आध्यात्मिक मार्ग में, आपको कई चीजों को त्यागना पड़ता है, खास करके जो चीजें प्रतिकूल हो भक्ति के, भगवत प्राप्ति के लिए। पर समय के साथ आप अनुभव कर पाते हो कि यह समय आपके लाभ के लिए है। राजसिक सुख के विषय में शुरू में मीठा और बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। तो जब हम भौतिक कार्य में जुड़ते हैं शुरू में वो मीठा लगता है, पर जब उसका परिणाम भुगतना पड़ता है आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तो जब आप अनुभव कर सकते हो कि ये जो सुख का कार्य ये था आज आपको दुख पहुंचा रहा है, तो आप सबसे भाग्यशाली हो, आपके आध्यात्मिक में रुचि है। तो गंभीरता के साथ इस शिक्षा को स्वीकार करो। भगवद गीता में भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुरुयम, ये जो ज्ञान है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो आप धर्म प्रेमियों से यही विनती है कि गीता को पढ़ो, गीता को अपनाओ अपने चरित्र में, और गीता के संदेश को आगे पहुंचाओ। भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में जो व्यक्ति इस संदेश को आगे ले जाता है वो कौन है, सबसे प्रिय है। और गीता में लगभग हर प्रश्न का उत्तर है। हमें आर्थिक उन्नति चाहिए तो उसका भी उपाय है। भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है किस लिए, वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करो। यज्ञ का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन। तो धर्म के नियमों के पालन के द्वारा ही आपको आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है, वर्षा प्राप्त होती है। तो आज शुद्ध संदेश की आवश्यकता है, गीता के संदेश की आवश्यकता है। पापा जी ने भगवद्गीता यथारूप को प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में 25 साल 30 साल पहले। आज गीता का अनुवाद विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है और सारे विश्व में लोग गीता को पढ़ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मन की शांति के लिए और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। हम मार्गदर्शन चाहते हैं कैसे किस मार्ग पर चले, उसका उत्तर क्या है, गीता। तो ये आवश्यक है कि जब हम गीता के संदेश को स्वीकार करें हमें संदेश को यथारूप स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं हम ले कृष्ण भगवान की गीता और साथ में अपना भाव और जोड़ दें। अगर यथा रूप लेंगे तो इसका असली प्रभाव रहेगा और इसका हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। साथ सब क्या बहुत भारी है कि आप लोग ध्यान में रुचि ले रहे हो। अब भक्त यही विनती है कि और गंभीरता के साथ महाप्रभु जी के संदेश का पालन करो, हरि नाम को अपनाओ, किसी न किसी रूप से समय निकालो। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी हाँ हरि नाम की महिमा हम समझ गए हैं, शास्त्र का निर्णय समझ गए हैं, पर हमारी समस्या ये है कि हमारे पास समय नहीं। मान लो आपके शरीर को कुछ हो जाए तो आप सब कुछ छोड़कर समय निकालते हो ना शरीर का उपाय करने के लिए। उसी प्रकार जब आप किसी चीज की आवश्यकता को पहचान लेते हो तो आप उसके लिए समय भी निकाल सकते हो। हरि नाम को अपनाइए, गीता भगवत पढ़िए, हर रविवार को मंदिर में कार्यक्रम होता है उसका लाभ उठाइए और घर में भी कार्यक्रम कर सकते हो जिसे नाम भक्ति वृक्षा कहा जाता है। इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे
हरे।
किसी का कोई प्रश्न है आज के लेक्चर के संबंध में? कोई प्रश्न नहीं? हाँ क्योंकि भगवान पूरे कई श्लोकों में उन्होंने क्या दिया है उसका मतलब वही है। भगवान अभी थर्ड पर्सन में कह रहे हैं उनकी शरण में हम, पर उससे पहले भगवान कह चुके हैं क्या कि मैंने ये सारा संदेश दिया है। भगवान कह चुके हैं कि मैं हरे के हृदय में विराजमान हूँ हनुमान पर के रूप में। भगवान हरे के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हमें वो मार्गदर्शन देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। जो भूलना चाहे उन्हें भूलने की शक्ति देते हैं, तो स्मरण करना चाहे उन्हें याद करने की शक्ति। आप में से कौन कौन हर रविवार को आते हो मंदिर? यहाँ आप लोग नहीं आते? और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कौन कौन कर रहे हो रोज? हमारी तो विनती यह है कि जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दे, जो कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इतना तो आपको पता है कि अगर कोई असली संपत्ति है तो क्या है? भगवत सेवा, भगवान के नामों का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, ये है असली धन। और आप ऐसे गीता कौन कौन पढ़ते हो रोज? रोज अखबार कौन कौन पढ़ते हो? अखबार या टीवी या रेडियो में खाते सब आप शर्मा रहे हो। तो गीता हम पढ़ेंगे कभी कभी, अखबार पढ़ेंगे, टीवी पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे रोज, है ना? अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो तो हम हर मिनट जानना चाहते हैं क्या स्कोर है, उसमें इतनी रुचि है। तो भगवान के संदेश जो कि हमें असली सुख पहुंचा सकता है उसमें रुचि बहुत कम है। फिर आप सब जो यहाँ आते हो इस कान के मंदिर में आपकी रुचि है और आप सबको मिलकर भगवान के संदेश को और भी आगे पहुंचाना चाहे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जा रहे दाखो आगे क्या तय क्यों हो क्या? तो महाप्रभु जी का आदेश है जैसे मिलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बजाय कृष्ण का उपदेश करो, क्योंकि कृष्ण का उपदेश सबके लिए लाभदायक है। और हर रविवार को यह कार्यक्रम होता है उसमें आइए विश्व के कई देशों में शहरों में हम लोग नामाहत और भक्ति वृक्षा के कार्यक्रम भी करते हैं, लोगों के घरों में सत्संग करते हैं। जहां भगवान के भक्तों द्वारा कीर्तन किया जाए वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। तो भगवान की कृपा चाहिए तो उनके नामों का उच्चारण कर। हरे कृष्ण। मैं ज्यादा देर तक प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि सर्दी का मौसम है और कहीं हमको दूर दूर ज्यादा होता है। Any questions? Kirtan. Do you do 5 minutes Kirtan? Kuch hai kiske ghar mein aaye. Gupta ji, thodi der mein chalta hoon. Dekho, aap chaliye, main aa jaunga. Mujhe jab ye 15-20 minute ho gaye. Oh. Bhai ji chale gaye. Yahan power cut kafi hota hai na? Yeah, power cut in BHU also. They have their own general
BHU, they have their own
station.
Yeah, 24 hours.
So no power cut.
No power cut.
No power cut.
Yeah, 24 hours.
Very rarely.